खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू करें, आए चंद लम्हों के लिए अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपनी फिक्रों को, अपने दिल को खुदावंद की सुपुर्द करेंगे, खुदावंद के हवाले करेंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। सो अपने पूरे दिल को खुदावंद की तरफ लगाएंगे ताकि आज का वक्त हम सब के लिए बाबरकत ठहरे। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, आई हुई तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, जिन्होंने तेरी आवाज़ को जवाब दिया, तेरे शुक्रगुजार हैं। और जो नहीं आ सके, जिन्होंने अपने दिलों को सख्त किया है, जिन्होंने अपनी नींद को ज़्यादा बेहतर जाना है, खुदावंद तू उन पर रहम कर, उनके दिलों को बदल ताकि हम सब तेरी मानत बने और तेरी तरफ भागें, तेरी पहचान में तेरी भूख और प्यास रखें। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले नए अहदनामों में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाप, उसकी चौथी आयत। चौथी आयत से हम 10वीं आयत तक का ये हवाला पढ़ेंगे और सीखेंगे खुदा के रहम के बारे में, क्योंकि पालूस रसूल दूसरे बाप की पहली 3 आयात में बयान करता है कि हम कौन थे, रूहानी तौर पर हमारी क्या हालत थी, रूहानी तौर पर हम कैसे जिंदगी गुजारते थे, रूहानी तौर पर हम जिंदगी नहीं गुजार रहे थे बल्कि जिस्म और जिस्म की ताकत और जिस्म की ख्वाहिशों और इस दुनिया की शहवतों में फंसे हुए थे। और वो बयान करता है कि पहली 3 आयात में तुम बेबस थे, लेकिन अब वो चौथी आयत में बयान करता है। मेरे साथ पढ़ें और जो नहीं पढ़ सकते वो गौर से सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इफ्सियों 2 बाप, उसकी 4 आयत। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है, और मसीह यसू में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यसु मसीह में हम पर आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था, आमीन। सो यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल चौथी आयत से इस बात को शुरू करता है और बताता है खुदा के काम के बारे में कि खुदा ने क्या किया जब हम मुर्दा थे, जब हम उससे दूर थे, जब हम इस काबिल नहीं थे कि खुदा की तरफ अपना चेहरा उठा सकते, जब हम खुदा से जुदाई में थे, रूहानी तौर पर रिश्ता टूटा हुआ था और अबलीज के हाथों गुनाह की मंडी में बिके हुए थे, गुनाह की मंडी में गुलाम थे, तो क्या हुआ? चौथी आयत में पालूस बयान करता है, मगर खुदा ने किसी और ने नहीं, हमने नहीं, किसी दुनिया के रुपए पैसे ने नहीं, दुनिया की किसी और चीज ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, मगर खुदा ने। यानी कि वो खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वो खुदा जो इसराइल का खुदा है, वो खुदा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो खुदा जो रास्तबाज खुदा है। और पालूस रसूल का यहां पर जो कहने का मकसद है, मगर खुदा ने कि वो तवज्जो दिलाना चाहता है कि दुनिया में बहुत से खुदा हैं, उन खुदाओं ने नहीं, दुनिया में बहुत से माबूद हैं। आज हमें अपने घरों में, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को इस बात की तरफ, इस सच की बात को बताने की जरूरत है कि सिर्फ खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने बाइबल मुकद्दस का मुकाशवा सच हमें बख्शा, जो आसमान पर तख्त नशी हैं, जिसने अपने बेटे को भेजा, कहता है मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से। आज दौलत का जो लफ्ज इस्तेमाल देखते हैं दुनिया में, वो क्या है? सोना, चांदी, हीरे, जेवरात, किसी की बैंक में बहुत ज्यादा पैसे, उसकी बहुत जमीन और जायदाद और शोहरत, और इस दुनिया की शानो शौकत, और इस दुनिया के अमीर लोगों को अगर हम देख लें तो वो खुद गर्ज हैं, अपने आप में भरे हुए हैं, अपनी खुदी में इतने जोरावर हैं कि वो किसी दूसरे के बारे में सोचना पसंद ही नहीं करते। दुनिया में आज बहुत से लोग हैं जिनके पास रुपया पैसा है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सिर्फ उनकी अपनी ही जात के लिए है। लेकिन पालूस रसूल यहां पर कहता है कि खुदा ने अपने रहम की दौलत से, रहम का मतलब आप सबको पता है, शफकत, तरस, दर्दमंदी, किसी पर तरस करना, मेहरबानी करना, कर्म करना। तो पालूस रसूल कहता है कि खुदा जो आसमान और जमीन का खालक और मालक है, जिसने हर एक चीज को पैदा किया है, वो खुदा अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की है, दुनिया में अगर कोई रुपया पैसा बांटे तो वो कम होता है, लेकिन खुदा अपने रहम की दौलत जब हम पर निशावर करता है तो वो ज्यादा होती है हमारी जिंदगी में। और खुदावंद ऐसा रहम का चश्मा है कि उसका रहम खत्म नहीं होता, वो बड़ा रहम करने वाला खुदा है। इसलिए हमें रहम करने के बारे में सीखने की जरूरत है कि खुदा ने हम पर रहम किया जब हम मुसीबत में दुखी थे, लाचार थे, भटके हुए थे, खुदा से दूर थे, शिकस्ता हाल थे, बेबस थे, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे, जैसे कि इस हिस्सा में पालूस बात करता है कि तुम मुर्दा थे, तुम इस दुनिया में मगन थे, खुदगर्ज थे, दूसरी आयत में वो बयान करता है, दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में वो कहता है तुम नाफरमानी के फर्जंद थे, तुम जिस्म की ख्वाहिशों में और दुनिया की शहवतों में फंसे हुए थे, और अकल और जिस्म की बातों को पूरा करते थे, और फिर वो कहता है कि तुम गजब के फर्जंद थे, यानी कि वो हालत बयान करता है कि ये तुम थे, मगर अब खुदा ने जो काम किया कि अपना रहम और अपना तर्स हम पर जाहिर किया, और यीशु मसीह ऐसी ही बात, ऐसा ही काम करता नजर आता है कि उसने हम पर अपना रहम किया। आज मैं चाहता हूं कि रहम के बारे में चंद उन कहानियों पर, उन बातों पर सोचें जो यीशु मसीह ने जमीन पर की और किस लिए की, मेरे साथ निकालें इस कहानी को, इस हिस्से को, इस वाक्या को जो हुआ, और वहां पर यसु मसीह अपना तर्स जाहिर करता है। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील, उसका 9 बाप उसकी 35वीं आयत में हम देखेंगे कि रहम का मतलब क्या है। रहम का मतलब है किसी दुखी, खस्ता हाल यानी कि बदहाल, जो मुसीबत ज़दा हो और बेचैनी और बीमारी और रूहानी और जिस्मानी तौर पर सताया गया हो, बेबस हो, अपने आप को नहीं छिड़ा सकता, ऐसा कमज़ोर हो, शिकस्ता हाल हो, और खुदा उन पर क्या करता है? तरस करता है, रहम की दौलत बरसाता है। और ऐसा ही यसु मसीह ने किया, और यसु मसीह ने ये कहा है हम सब से कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। सो मत्ती 9 बाप उसकी 35वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं, और यहां पर लिखा है मत्ती की अंजील उसका 9वां बाप उसकी 35वीं आयत में, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और 36वीं आयत में क्या लिखा है? और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। यहां पर ये वो वाक्या है जब यसु मसीह बीमारों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को सेहत दे रहा था, मोजजात कर रहा था, खुदा की खुशखबरी की बातें बता रहा था, यसु मसीह खुदा के रहम और दौलत के बारे में बयान कर रहा था, गूंगों को बोलने की कुव्वत, बहरों को सुनने की ताकत, बुदरू गिरफ्तार लोगों को आजादी दे रहा था, तो यसु मसीह ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है, लोगों की भीड़ है, और जब यसु मसीह ने उन पर नजर की, उनकी हालत देखी, तो क्या यसु मसीह को आया? तरस आया। तरस क्यों आया? वो खस्ता हाल थे, उनकी हालत ऐसी थी कि वो दुखी थे, मुसीबत जद थे, परागंदा थे, वो भटके हुए थे, उनका कोई भी वाली वारस नजर नहीं आ रहा था। जैसे यसु मसीह ने कहा कि जैसे उनकी हालत क्या थी? उन भेड़ों की मानद जिनका कोई चरवाहा ना हो। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, अगर किसी कि भेड़ उससे दूर हो जाए, तो उसका कोई मालक ना हो, तो उसकी हालत कैसी होती है? सबसे पहले लोग उसे चुराने की कोशिश करेंगे कि इसे काट कर खाया जाए, अगर नहीं तो फिर इर्द गिर्द के कुत्ते और दूसरे जंगली जानवर या दूसरे जानवर उस जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भेड़, वो गाय, वो कोई भी जानवर है, उसकी देखभाल कोई भी करने वाला नहीं, इसलिए जानवर उस पर हमला करेंगे। सो यसु मसीह यहां पर कह रहा है उन लोगों की हालत देखकर, और कहता है कि मुझको उन पर रहम और तरस इसलिए आया है क्योंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं है। और यसु मसीह ने उन पर तरस का किया, और यसु मसीह ये बात अपने शिगिर्दों को बता रहा है, उनको सिखा रहा है, इसलिए कि वो चाहता है कि वो तरस करना, रहम करना सीखें। क्योंकि यसु मसीह ने अपने शिगिर्दों को क्या कहा 37वीं आयत में? तब उसने अपने शिगिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यानी कि ऐसे लोगों की भीड़ और बहुत ज्यादा है, बहुत से खितों में, बहुत से इलाकों में, जो खुदा को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जो उनको खुदा के बारे में बताए। ऐसे लोगों की बड़ी भीड़ और बहुत से लोग कबीले हैं, नस्लें हैं, कौमें हैं, जो परागंदा है, जिनको पता नहीं कुछ भी। और यसुमसी ने अपने शिगिर्दों को कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। और यसुमसी यहां पर क्या चाहता था कि उसके शिगिर्द इस बात को समझें कि उन्हें कुछ करने की जरूरत है, और वो क्या है, यसुमसी की बात को समझने की। और यसुमसी ने 38वीं आयत में कहा, पस फसल के मालक से मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। यहां पर यसुमसी बात कर रहा है देहाती तौर पर के जब उसके मुलाजम मालक से कहते हैं कि फसल तैयार है और मजदूरों को भेज ताकि काटी जाए। तो यसुमसी यहां पर उनको कहता है कि तुम अब तैयार हो, जाओ और जाकर मनादी करो। और इसी अगले बाप में हमें जिक्र मिलता है कि यसुमसी ने 12 शागिर्दों को चुना और उनको क्या कहा। जब हम 10वें बाप की पहली 4-5 आयत को देखते हैं, तो यसुमसी ने अपने शागिर्दों को चुना, और 6ठी आयत में यसुमसी कहता है, मत्तीस 10 बाप उसकी 6ठी आयत में, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक है, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। यहां पर यसुमसी उनको बता रहा है, ना सोना अपने कमर बांध, ना सोना अपनी कमर बांध और ना सोना अपने कमरबंद में रखना, ना चांदी ना पैसे, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठियां, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। यसुमसी उनको कह रहा है कि जाओ और जाकर इस रहम के बारे में उनसे बातचीत करो कि खुदा रहम दिल है। और यसुमसी चाहता है कि उसके शिगिर्दों में ये रहम और तर्स और ये मेहरबानी और करम और तर्स पैदा हो, ताकि वो देखें कि लोग किस तरह मर रहे हैं बगैर निजात दहिंदा के। आज ये तर्स की हमें भी जरूरत है, हमें भी खुदा से दुआ करने की जरूरत है कि खुदा बाप मुझे यसुमसी जैसा तर्स और रहम करना सिखा। हमें ये तर्स और रहम अपने बच्चों को बताने की जरूरत है, क्योंकि जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें देगा। क्योंकि इसी बाप में दो अंधे थे, उन्होंने पुकार कर कहा, ऐ इब्ने दौद हम पर रहम कर, तो यसुमसी ने उनको अंधों को आंखें दी। 15वें बाप में हम देखते हैं उसकी 22वीं आयत में, कनानी औरत ने कहा कि ऐ खुदावंदी खुदा मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी बेटी बदरू गिरफ्तार है। और फिर इसी मत्ती की इंजील में 17वें बाप की 15वीं आयत में, फिर वहां पर हम देखते हैं कि एक बाप ने, उसके खानदान ने दरख्वास्त की कि मेरा बेटा जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता है और जब ऐसा होता है तो वो आग में गिर पड़ता है, वो पानी में गिर पड़ता है, हम पर रहम कर। हमें इस रहम को मांगने की जरूरत है कि खुदावन हमें भी तर्स करना सिखा, ताकि तेरे पैगाम को दूसरों तक लेकर जाएं। आज हमारी मसीही जिंदगी सिर्फ रुकी रुकी महसूस होती है अगर हम दूसरों तक नहीं जाते, अगर दूसरों को रहम और दौलत के, खुदा के दौलत के बारे में नहीं बयान करते। क्योंकि पालूस रसूल इफिसियों 2 बाप उसकी 4 आयत में इस हकीकत को बयान करता है कि उसने जब तुम बेबस थे तो तुम पर रहम किया, जब तुम परागंदा थे, जब तुम बेबस थे, भेड़ों की मानद भटकते फिर रहे थे, खुदावन ने तुम पर रहम किया। और क्या लिखा है 4थी आयत में, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। और ये है खुदा के रहम की तस्वीर कि वो हम पर तरस करता है। हम खुदा के हुजूर झुके हैं, हमें भी एक दूसरे पर रहम करने की जरूरत है। कर्म करने की जरूरत है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाप में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। अहम दुआ करें। खुदा बाप तमाम बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे और हम सबको तेरे रहम और तरस की ज़रूरत है। यीशु मसीह के नाम में आज हमको सबको संभाल, बड़ी बरकत दे। ये दुआ मांगते हैं।